ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टपयेष्टपदेषु नित्यं भगवद्सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। एते चंसाकलापुंसं कृष्णस्तु भगवन् स्वयं इन्द्रियाद्व्याकुलं लोकं मृद्यन्ते युगे युगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखसमनस्तं नमामि हरिं परम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखदं मृतदिवसम्मुदं विभतभगतं रसमालयं मुहुरोरासिकभुवि भावुकः। आज हम श्रीमद्भागवतम षष्ठ कांत अध्याय 18 श्लोक संख्या 72-73 इसमें तो अच्छा कौन अच्छा पहले श्लोक का तत्पर्य नहीं है, सो मैं पढ़ रहा हूँ पहले श्लोक, इसके बाद साथ ही साथ द्वितीय श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृतो में सप्तधा गर्भा आसन सप्ता कुमार का ते पिछाय के कशो वृक्षना सप्तधान पिमृरे। अनुवाद। सर्वप्रथम मैंने गर्भस्था शिशु को 7 कांदों में कत डाला जिससे 7 शिशु बन गए। तब फिर मैंने प्रत्येक शिशु के भी 7 कंद कर दिए, किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से इनमें से कोई भी मरा नहीं। तत्तस्तत्परमाश्चर्यम् वीक्षावावासितं मया महापुरुष पूजाया सिद्धि कप्यनुसंगिनी। तथा तब तत् वो परम आश्चर्यम महान आश्चर्य भिक्षा देखकर व्यवस्थितम यह निश्चय किया गया माया मेरे द्वारा महापुरुष भगवान विष्णु की पूजाया पूजा का सिद्धि फल कापी कुछ अनुसंगिनी अनुसंगिक गौण अनुवाद और तत्पर्य शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद के अनुवाद। हे माता, जब मैंने देखा कि उन 400 पुत्र जीवित है तो निश्चित ही मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि यह आपके द्वारा विष्णु उपासना के लिए की गए नियमित भक्तिपूर्ण सेवा का ही अनुसंगिक फल है। तत्पर्य, भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न व्यक्ति के लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, यह वास्तविकता है। भगवद गीता में कहा गया है, भगवद गीता का अंतिम श्लोक, यत्रा योगेश्वर कृष्ण यत्रा परतो धनुर्धरः तत्रा श्रीर विजय भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है, वहीं शश्वत राजलक्ष्मी समस्त ऐश्वर्य विजय विलक्षण शक्ति तथा नीति है, इसे मेरा मत है। योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहे कर सकता है। यह प्राप्ति परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है। ईश्वर को प्रसन्न कर लेने वाले के लिए कोई भी उपलब्धि आश्चर्यजनक नहीं। उसके लिए सब कुछ संभव है। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति सापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललितश्रीविशगन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गविगकन्ता राधाकन्ता नमस्तुते। तत् कञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च परीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव जनि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं कौलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यता। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को राजेंद्र को बात करने के लिए दीति का व्रत इसके बारे में बात कर रहा है। और दीति अपने स्वामी अपने पति की सेवा करते हुए उनसे कुछ पूछा, और जब पति संतुष्ट होता है तो जो स्त्री मांगती है, पत्नी जो मांगती है तो जरूर दे देता है। उनकी सेवा करते हुए तो उनके संतान के लिए, मिलने के लिए अनुरोध किए थे और ये स्वाभाविक है स्त्री के लिए। कश्यप मुनि प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए तदस्तु। लेकिन इसके बाद दीति ने बोला कि मेरे को एक पुत्र को चाहिए जो इंद्र जी का वध कर सकता है, क्योंकि इंद्र ने भगवान श्री विष्णु से अनुरोध किया है उनके दीति के दो पहले पुत्र को मार डालने के लिए अनुरोध किए थे, उन्होंने भी किया है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष पहले, इसके बाद हिरण्यकशिपु इसलिए क्रोधित हो गए और उनको मार डाला कि निर्णय किए थे, जो वास्तव में उचित नहीं है। तो ये सुनकर दुखित है कश्यप मुनि, लेकिन उन्होंने बोला कि संतान तो जरूर दे देंगे। तो गर्भदान संस्कार करते हुए शास्त्र के अनुसार विधिवत पूर्वक, लेकिन ये सुन के कि मेरे को एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सकता है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। किंतु कश्यप मुनि बुद्धिमान पुरुष थे, भक्त थे, इसलिए ने सोचा कि ठीक है, बोल दिया और देने भी चाहिए बच्चे स्त्री को, पत्नी को। लेकिन उनको एक व्रत पालन का उपदेश दिया है और पत्नी स्त्री तो स्वामी पति के उपदेश तो का पालन करती है, करने ही चाहिए। उन्होंने अलग अलग नियम बोले थे कि क्या करना है और क्या ना करना है, लेकिन जो नियम जो है ये वास्तव में भक्त लोग के लिए है, जिससे भक्त बन जाता है, वैष्णव बन जाता है पुरुष स्त्री। तो और ये पालन करते हुए तो इंद्र जी चिंतित हो गए थे, अनुभव किए थे कि उनकी इच्छा क्या है दीति के। तो इसलिए उन्होंने सोचा ठीक है, मुझे इसके बारे में कुछ कहना तो पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार में हमको देखना है कि हम इस भौतिक जगत में अच्छा तरह रह सकता है, स्वस्थ ठीक हो, ठीक होना चाहिए, इसके बाद भी प्रयास करना। जिसे इस कलयुग में 100 वर्ष तक रह सकता है तो शास्त्र के अनुसार प्रयास करना, जिससे हम 100 वर्ष तक रह सकते हैं, जो आजकल भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वातावरण शुद्ध नहीं है और ये भी पदार्थ जो भी होता है शुद्ध घी मिलना अभी तो ब्रज में ठीक है, गौशाला से मिलता है, और लेकिन हमको भी मालूम है, सबको मालूम है कि कभी कभी मिलावट हो जाते हैं जब दूध देता है। ठाकुर जी के लिए भी दूध हम खरीदता है, गौशाला से कुछ मिलता है लेकिन खरीदता है, अभी जो मिलता है अच्छा दूध है लेकिन दूसरे गौशाला भी है और कभी कभी देखता भी है, अनुभव कर सकता है कि इसमें दूध में पानी भी देता है। ऐसा करते हुए ज्यादा दूध मिलता है तो थोड़ा सा निकालते हैं, दूसरे को बेचता है पैसे कमाने के लिए और दूसरी जगह पे दूसरी चीज इसमें डालता है, और मधु भी शुद्ध मधु मिलना कठिन है, शुद्ध घी कलयुग में मतलब बहुत होता है, लेकिन फिर भी यथासंभव हमको प्रयास करना शुद्ध वातावरण में रहना, और ब्रज में तो संभव है और मंदिर में रहता है अत्युत्तम है, और शुद्ध पदार्थ ठाकुर जी को लगाना है और भोग जब बनता है इसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो सुबह तक रहने की प्रयास करना है, अच्छे तरह से भजन करते हुए, सेवा करते हुए, प्रचार करते हुए। तो पिछले युग में 10,000 तक द्वापर युग, इससे पहले 10,000 तक वर्ष तक रह सकता है। तो इंद्रदेव भी तो उन्होंने सोचा मुझे तो जीना है, अभी अंत के समय तो अभी तक ना आ गया है उनके विचार से, और वैसे तो था। इसलिए आत्मा रक्षा के लिए शरीर के, तो उन्होंने सोचा मुझे कुछ करना है, ऐसे करते हुए क्योंकि अन्यत था, क्योंकि जो की इच्छा थी एक पुत्र मिलने के, जो इंद्र मार डाल सकता है अगर अच्छे तरह से कर पाती है ये व्रत, तो ये फल होगा। लेकिन कोई दोष है इसमें तो विपरीत फल होगा, तो भक्त बन जाएंगे ये पुत्र। तो विचार करते हुए उन्होंने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं, अंत में सोचा कि ठीक है मैं महाप्रभु जाऊंगा उनके आश्रम में और उनकी सेवा करूंगा दीदी के, और अगर व्रत पालन में कोई दोष होगा तो मैं इसका फायदा उठा के, ये जो घर में है शिशु को मार डाल दूंगा। तो सेवा करते हुए अच्छा तरह से आश्रम में उनको फूल पूजा के लिए, क्योंकि है ना व्रत जब होता है तो नियम का पालन है, जैसे कार्तिक व्रत चतुर्मास व्रत, चतुर्मास व्रत कम से कम प्रभुपाद ने बोला है ये कम से कम है, पहले मास शक नहीं लेते हैं, द्वितीय मास में दही नहीं लेते हैं, तीसरे मास में दूध नहीं लेते, चौथे मास में उड़द दाल नहीं लेते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांतों के गुरु महाराज प्रभुपाद के, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद सनातन गोस्वामी के अनुसार, हरिभक्त विलास के अनुसार अलग दूसरे नियम भी दिया गया है क्या नहीं लेना है, जिससे मधु नहीं लेना है चार मास के लिए, टमाटर नहीं लेना है, बैगन नहीं लेना है इत्यादि। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद पश्चिम देश में प्रचार किया है शुरुआत में, तो उनके लिए जिनको कुछ नहीं मालूम था वैदिक संस्कृति के बारे में, वैष्णव संस्कृति के बारे में, और इंद्र तृप्ति में लीन थे, इसलिए ज्यादा नियम नहीं दिया था। लेकिन नियम है, और गौड़ीय वैष्णव और दूसरे वैष्णव के संप्रदाय में व्रत का पालन करता है अच्छे तरह से। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, व्रत का पालन ये करना ही है, जैसे चार नियम है सबसे पहले, इसके बाद व्रत कम से कम ये चार, और इसके बाद तो दूसरे भी कर सकता है। और कार्तिक व्रत में दमर व्रत, दमदार व्रत, उसका दूसरा नाम भी है ऊर्जा व्रत। ऊर्जा मतलब भगवान की शक्ति है, शक्ति कौन है, श्रीमती रानी, इसलिए उनका नाम है ऊर्जेश्वरी, मूल शक्ति है, मूल रूप कृष्णा है, स्वयं भगवान से कृष्णा है, आदि पुरुष है, और मूल शक्ति है श्रीमती रानी ऊर्जेश्वरी। तो ऊर्जा व्रत का पालन करता है, प्रभुपाद ने उल्लेख किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो कम से कम तो उर्दान नहीं लेना है, और जो करना है ये दमदार अष्टकम उच्चारण करना है, और दीपदान होता है ये कम से कम है कार्तिक व्रत में। अगर और भी कर सकते हैं अत्युत्तम है। कोई भक्त लोग सिर्फ एक बार अन्न प्रसाद लेता है, कोई भक्त लोग जो है मिठाई नहीं लेता है, दूसरे भक्त लोग सिर्फ फलाहार लेता है एक मास के लिए, तो अलग अलग व्रत हो सकता है, कर सकता है। लेकिन ये भक्ति के मुख्य अंग नहीं है, गौणांग है, पलक करने अच्छा रहता है, क्योंकि तपस्या तो करना ही चाहिए, बिना तपस्या आगे नहीं जा सकता है। ये भौतिक शक्ति तो चोरना है, तो इसके लिए तो अलग अलग व्रत पालन अच्छा है। जैसे एकादशी व्रत भी उसी समय से वे एकादशी प्रसाद लेता है, और वास्तव में अत्युत्तम है नियत जल। अगर नहीं ये नहीं कर सकता है तो जल भी ले सकता है, अगर ये भी मुश्किल है तो फलाहार कर सकता है एक बार, अगर ये भी मुश्किल है तो दूसरी चीज भी ले सकता है। लेकिन ज्यादा प्रसाद नहीं लेना है, एक या दो बार, जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से एक बार प्रसाद लेते थे। प्रभुपाद वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और प्रचार करते थे विदेश में, तो वे अल्प प्रसाद लेता है सुबह और दोपहर के समय, लेकिन दूसरे वैष्णव दोपहर के समय लेता है या शाम के समय लेता है प्रसाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये भक्ति के मुख्य अंग। उनमें से भी उल्लेख किया है भक्त रसमृत सिंध पंच मुख्य अंग है। तो एक तो है धामवास, दूसरे है सदुसंग जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सदुसंग तो आगे जाना संभव नहीं है, शुद्ध वैष्णव की संग लेना है, लेकिन दूसरे भक्त की संग भी लेना है, अकेले भजन करना रहना संभव नहीं है, रह सकता है लेकिन आगे जाना मुश्किल है, तो सदुसंग बहुत महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात भागवत श्रवण, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम के श्रवण करना है, ये भगवत गीता। तत्पश्चात चैतन्य चरितमृत भी पढ़ना है, और दूसरे ग्रंथ जो है हमारे पर्वताचार्यों के भक्ति रसमृत सिंधु उपदेश अमृत इत्यादि, और दूसरे भी है, इसका श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, अन्यथा चतर से आगे नहीं जा सकता है। इसके बाद प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें भी उल्लेख किया है तो नवविध भक्ति और 64 के जो अंग है उन्होंने उल्लेख किया है रूप गोस्वामी, इसमें आधा से ज्यादा ठाकुर जी के संबंध में है। और ठाकुर जी की सेवा नहीं करता है तो भगवान का स्वरूप अनुभव करना, और ये भी अनुभव करना कि कृष्णा और कृष्ण नाम अबिना है तो कठिन होगा। तो जब ठाकुर जी की सेवा करता है तो आदान प्रदान होता है, तो भगवान संतुष्ट हो जाता है और भक्त भी संतुष्ट हो जाता है, और तब अच्छा तरह से जप कर सकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है अंग है। नाम कीर्तन पंच महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग है नाम कीर्तन, और कार्तिक मास में ज्यादा करना है चतुर्मास में। और जैसे दीक्षा के समय प्रभुपाद हर बार बोलते थे, जब दीक्षा देते थे पहले हरि नाम, इसके बाद उपनयन संस्कार, तो हमेशा बोलते थे तो कि आपको क्या ना करना है, तो चार नियम बोलते थे भक्त लोग, अब क्या करेंगे, हाँ 16 माला जप करेंगे। लेकिन प्रभुपाद हमेशा बोलते थे इसके बाद कम से कम 16 माला जप करना है। कम से कम मतलब क्या है कि हमको ज्यादा करना है, और कभी कभी भक्त लोग तो बोलते हैं वो तो 16 माला तो काफी है, इसके बाद तो सेवा करना है पढ़ना है। और हाँ आजकल तो फेसबुक में देखना है कि क्या हो रहा है, व्हाट्सएप में, ठीक है ये भी देख सकते हैं, हमको भी मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, लेकिन ज्यादा ना है, ज्यादा भजन करना है तो कम से कम 16 माला। और एक बार एक भक्त पूछा था प्रभुपाद से, तो तू किलो माला जप करना है, तो 16 माला तो किन कर सकता है, तो प्रभुपाद ने बोला है तो हाँ ज़्यादा तो करना ही है, वास्तव में कोई सीमा नहीं है। कोई बोलते थे 20 या 24 किन करे 32, प्रभुपाद ने बोला कोई सीमा नहीं है। तो उन्होंने भी बोला था कि 16,000 माला जप कर सकते हैं मतलब संभव नहीं है, लेकिन बताने के लिए कि 16 माला कुछ नहीं है। और शुरुआत में भी प्रभुपाद भी बोलते थे कि अपने शिष्य को कि शुरुआत में तो मतलब जब आए थे तो शुरू किया 16, इसके बाद प्रभुपाद एक बार बोला था कि वास्तव में 16 माला कुछ नहीं है, आपको 64 माला जप करना है। तो भक्त लोग प्रयास किए थे 2-4 दिन, और मुश्किल है 64 माला जप करना, सेवा भी करना है और कपड़े धोना है और बहुत कुछ करना है। तो प्रभुपाद के पास पहुंच गए फिर से, प्रभुपाद जी हमारे लिए संभव नहीं है 64 माला, तो क्या करे, कितना वाला करे। प्रभुपाद ने बोले ठीक है 32 माला कीजिए आधा। तो प्रयास किया भक्त लोग ने, तो कुछ दिन के बाद फिर से प्रभुपाद के पास पहुंच गए, 32 माला भी मुश्किल है तो क्या करे। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है कम से कम 16 माला कम से कम, लेकिन एकादशी के दिन ज्यादा करना है, सलाह दिया कम से कम 25 एकादशी के दिन। तो ये जब व्रत करता है तो नियम का पालन करना ही है, जरूरत है, लेकिन सबसे जरूरत है कि इसमें भी तो पूजा, उसी समय महामंत्र का जप नहीं करते थे, दूसरे मंत्र का जप करते थे, और जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि, और गायत्री मंत्र विशेष करके ब्रह्म गायत्री ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुः वरेण्यम इत्यादि, लेकिन ये सिर्फ पुरुष के लिए है। वास्तव में पहले ये ब्रह्म गायत्री सिर्फ पुरुष को देते थे, स्त्री को नहीं दिए थे लेकिन दूसरा मंत्र देते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि और मंत्र के साथ तो ठाकुर जी की सेवा के लिए भी उपदेश दिए थे, उनको भी बोला था थोड़ा बहुत ठाकुर जी की सेवा करना है। जिस कार पे पुरुष सेवा करते थे आज भी आजकल भी, और स्त्री भोग बनाती है, लेकिन कभी कभी जब पति नहीं है तो वे भी पूजा कर सकते हैं घर पे। और यहाँ पर भी उपदेश दिए थे कि कम से कम ठाकुर जी को फूल चलाना है, तो ये घर पे रहते हुए तो प्रभु जी सेवा करता है ठाकुर जी के, लेकिन इसके बाद भी पत्नी भी थोड़ा बहुत सेवा कर सकती है, फूल अर्पण कर सकते हैं, दीपदान भी कर सकती है अलग से घर पे, और विशेष करके कार्तिक व्रत में तो करना ही है, मंदिर में या हो या मंदिर में या घर पे भी हो, दीपदान देना है सबको, इसलिए तो दिया गया है कि सबको करना है। अन्यथा दूसरे समय ये भी शास्त्र के अनुसार, जब मान लीजिए मंगल आरती के लिए जाता है भक्त लोग, और तो पुजारी है जो मंगल आरती जो उपचार जो होता है अर्पण कर रहा है, और इसका लाभ जो इसका फल जो होता है आरती करने के लिए ये सबको मिलता है, तो शुरुआत से तो शुरू से मंगल आरती के समय अंत तक जो रहता है आरती के जो करता है पुजारी, इसका फल भी मिलता है, ठाकुर जी की सेवा का फल मिलता है। लेकिन फिर भी तो कार्तिक मास में और घर पे भी तो सबको दीप अर्पण करना चाहिए, दीपदान होना चाहिए सबके लिए, ये नियम सेवा है कार्तिक मास के। तो ये भी पुष्प अर्पण करती थी, और तो इसके लिए तो फूल तो वहाँ पर आश्रम है बगीचा है, तो जैसे आजकल रहता है तो उसी समय नहीं रहते थे, अपना जमीन था अपना कुटिया, और इसके बाद गाय भी एक दो गाय सबके पास तो था, पूजनीय है और गाय और की सेवा करना है। जिसे अगर कोई गोलोक जाना है तो यहाँ पर कहावत है, कहता है साधु महात्मा लोग, अगर गोलोक जाना है, गोलोक इसका अर्थ क्या है, गो लोक, वहाँ पर बहुत सारी गाय है। कृष्ण के पिताजी के पास कितना गाय है, 9 लाख गाय है, आश्चर्य की बात है। तो हमारे गौशाला में कितना गाय है, 300, 400, 500 है अभी। कोई आश्रम है, कोई जैसे ये राजेंद्र दास बाबा जी महाराज, और दूसरे आश्रम है शायद 1000 या रमेश बाबा या 2000, 5000 गुजरात में पथ में रखे, जो वहाँ पर गौशल में शायद 10,000 है, 35,000 है, 35,000, वाह वाह, या आधा लाख भी हो सकता है, 2.5 लाख, अच्छा अत्युत्तम है, 2.5 लाख तो संभालना मुश्किल है। लेकिन जब हाँ तो भगवान को मानता है तो गौ सेवा करता है भक्त लोग, लेकिन 9 लाख तो बहुत है। तो अगर गोलोक जाना है तो गौ सेवा करना है, क्योंकि कृष्ण तो भगवान है, लेकिन क्या कर रहा है, तो हर प्रतिदिन, तो सुबह के अभी है ना, तो पुणे 9 बजने वाला है अभी, कृष्ण तो पा लिया है सुबह का नाश्ता, बहुत कुछ बनाती है, और रसोई में नंदा भवन में यशोदा माँ और यशोदा माँ देखभाल, पूरा घर का देखभाल तो करती है, और आदेश देते ये करना वो करना है, तो रोहिणी माँ को बताती है कि आप तो रसोई में जाना है, कुछ बनाना है कृष्णा नंद बाबा के लिए, कृष्णा बलराम और दूसरे जो आ जाता है, और श्रीमती रारानी को भी बुलाया है, तो श्रीमती रारानी आते हैं, उनकी सहेलियाँ उनके साथ है, बहुत कुछ बनाती है कृष्ण के लिए। उसके बाद देखते हैं कि कृष्ण कैसे ग्रहण करता है, और तो ब्रज के बहुत सारे लीला है, बहुत सुंदर लीला है, अनंत लीला है कृष्ण के। और कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में चिंतन करना है। तो यशोदा दामोदर के दीपदान होता है, लेकिन साथ ही साथ तो जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो राधा दामोदर की सेवा करता है, क्योंकि हमारे इष्ट देव है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कृष्ण ही है, लेकिन जब गोपियों के साथ है और या गोपियों के साथ है, आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यस्त धाम वृंदावनम राम या काचित उपासना व्रज वदवार्य कल्पिता। तो ये चैतन्य महाप्रभु के मत है, आराध्य भगवान कृष्ण है, और जिससे पूजनीय है कृष्ण वैसे उनकी धाम वृंदावन धाम, और सर्वश्रेष्ठ उपासना किसके है, व्रज वधुएं ये गोपियां, कृष्ण किसी की सबसे प्रिया है, कृष्ण प्रिया है। तो राधा दामोदर की स्मरण करता है भक्त लोग, और यशोदा दामोदर भी, लेकिन अगर जैसे मेरे पूर्वताचार्यों ये गोपी बाब में है ज्यादा से ज्यादा, सब नहीं लेकिन ज्यादा से ज्यादा, जैसे 6 गोस्वामियां ये गोपियां मंजारियां है, श्रीमती रारानी की सेवा करते हैं, तो इसलिए इसमें प्रवेश करने के लिए कृष्णा स्मरण जन्म चष्टम नीचा पृष्ठम सामहितम कथा रचस्त सत्य कुरियर वजन व्रज सदा। कृष्ण रों के जो नित्य सिद्ध परिकार का स्मरण करना है, और रूप गोस्वामी जो रूप मंजारी के अनुगत्य में चलते हुए उनके भाव लेकर शरण भजन करना है, इसे करते हुए उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। तो ठाकुर जी की सेवा करना है। तो इंद्र जी ने तो आश्रम में गए और फूल का चयन किए थे और दीदी को दिए थे, और तो चिंतित थे, तो एक साल के लिए व्रत करने के लिए बोला था कश्यप ने, तो दो तीन चार मास के बाद तो चिंतित थे क्या हो रहा है, कोई दोष नहीं है व्रत में। लेकिन इसके थोड़े देर के बाद शाम के समय प्रसाद पाने के बाद हाथ और मुंह नहीं धोया, और इसके बाद लेट गए और सो गए, और ये देख के ये तो दोष है इसमें, प्रसाद पाने के बाद हाथ और मुंह धोना है, नियम है, और इसके बाद संध्य के समय नहीं लेटना है, तो दो दोष तो हुआ वहां पर, सबसे पहले हाथ और मुंह नहीं धोना, इसके बाद संध्य के समय सो गए, तो ये देख के इसमें प्रवेश किया घर में, और जो एक पुत्र था तो गर्भवती जब थी तो उसको विभाजित किया सात भाग में, और इसके बाद फिर से सात, ये सात भाग फिर से विभाजित किए सात बार, तो 49 भाग हो गया, और उन्होंने सोचे ठीक है तो मार जाएंगे, लेकिन आश्चर्य की बात ये जीवित रहे। तो ये श्लोक उत्तर पारिय के संबंध में है कि भगवान जो इस आध्यात्मिक जगत में भी, तो भगवान श्री कृष्ण तो उनके अद्भुत लीला है, अचिंत लीला है, अद्भुत लीला है, और समझना तो भौतिक बुद्धि से संभव नहीं है आध्यात्मिक जगत में, तो कृष्ण की अनंत लीला है गोलोक वृंदावन में जो सर्वोत्तम जगह है, और वहाँ पर तो उनके अष्टकालीय लीला है, और जैसे छह ऋतुएँ हैं, जैसे अभी शिशिर अभी हेमंत ऋतु में है, तत्पश्चात शिशिर ऋतु में प्रवेश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर ये छह ऋतुएँ जो है निरंतर विराजमान है, तो कृष्ण शिशिर ऋतु में जा सकता है, और उसी दिन में भी कृष्ण ऋतु में प्रवेश कर सकता है, और वहां पर ज्यादा तंद नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, अगर थोड़ा सा ज्यादा तंद जब लगता कृष्ण को तो सूर्यदेव तो है वहां पर सेवा कर रहे, सेवा भाव में है, क्योंकि प्रकाश से तो ठीक हो जाता है कृष्णा, और जब ज्यादा गर्मी है तो बदला जाता है और थोड़ा सा पानी गिराता है, और हिमपात भी होता है वहाँ पर, यहाँ पर नहीं देखता है, कभी कभी ओले आ जाता है लेकिन हिमपात नहीं है लेकिन वहाँ पर होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं है, तो ये आश्चर्य की बात है, और ये भौतिक भावना से भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकता है। भजन करते करते भगवान की अचिंत शक्ति असीमित शक्तियाँ समझ सकता है थोड़ा बहुत, और भौतिक जगत में भी जब यहाँ पर उनके आविर्भाव होता है उनके ब्रज में भी, तो अंत तक तो शुरुआत से अंत तक उनके अद्भुत लीला है, शिशु के रूप में आया है, लेकिन सर्व शक्ति शाली तो है भगवान श्री कृष्ण, सारा ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है, तो शिशु के रूप में अलग अलग जो असुर लोग जो आए थे मार डाला लेकिन वास्तव में तो लीला में लीन है कृष्णा, और है ना जो जो असुर ज्यादा आता है तो वास्तव में ब्रज के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, ब्रज के ऊपर रहता है, और कृष्णा ये मार डालता है ये असुर लोग, ये वसुदेव उनके विस्तार रूप के माध्यम से या विष्णु के माध्यम से उनको मार डालता है, लीला में लीन है, उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन क्योंकि शिशु के रूप में है कभी कभी भूल जाता है कि मैं भगवान हूँ, सर्वज्ञ है लेकिन मुग्ध भी है, एक साथ उनकी योग माया के प्रभाव से अंतरंग शक्ति से। और जब छोटे बच्चे थे तो ये विशाल पर्वत छोटी सी उंगली से उठाया, मैंने दो हाथ है, और क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा दाएं हाथ से कुछ कर रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा शक्ति इस हाथ में है, इस बाहु में है, इसमें कम है, लेकिन फिर भी बाएं हाथ से और उंगलियों से मैं सबसे छोटा, इससे उठाई विशाल पर्वत 7 दिन के लिए, आश्चर्य की बात है। तो भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, जो भी करना चाहता है कर सकता है आराम से। इसलिए यहां पर तो इस श्लोक में भी उल्लेख किया है कि भगवान के लिए सब कुछ तो संभव है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक पुत्र था, विभाज जी किया है, और इसके बाद उन्होंने सोचा इंद्र ये तो मर जाएंगे, मर गया, लेकिन जीवित हो गए भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से। उन्होंने भी बाद में भी बोला इंद्र की, मतलब इसमें कि क्योंकि दीदी को बताते थे, क्योंकि आपने नियमित रूप से भक्ति पूर्ण सेवा किया है कश्यप मुनि के, एक प्रकार के उनकी कृपा से, छल से कि नियम दिया है जो वैष्णव के लिए है, और इसे करते हुए ये भक्त बन गया, ये मरुत। तो भगवान के लिए तो हाँ, जो सबके स्रोत है और भौतिक जगत उनकी इच्छा से प्रकट हो जाता है, असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, विष्णु महाविष्णु के शरीर से, दिव्य शरीर से निकलते असंख्य ब्रह्मांड इत्यादि। तो इसलिए तो उनके लिए कुछ ऐसा करना जैसे यहाँ पर किया है तो मुश्किल का काम नहीं है। तो इसलिए तो इंद्र जी बोलता है दीति को कि ये भगवान की कृपा है। तो इस तत्वारी में भी उल्लेख किया है, प्रभुपाद यथा योगेश्वर कृष्ण यथा पर्थो धनुर्धरा तथा श्री विजय भूति रुवनी तीर्म तीर्म। भगवत गीता के अंतिम श्लोक, जो भगवान की सेवा कर रहा है और भक्त के स्मरण करता है, शुद्ध भक्त तुम के लिए तो विजय है, और जो कुछ भी चाहे भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए तो मिलता है, उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। जब भगवान की और भगवान के प्रतिनिधि की पूजा सेवा और उनके अनुगत्य में उनके आदेश के अनुसार जब चलता है, उनकी कृपा से उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। लेकिन अच्छे तरह से प्रयास करना है, चेष्टा करना है, तब भगवान की कृपा मिल सकता है। ये तो इस दमोदर मास के ये शिक्षा भी मिलता है, जैसे दमोदर लीला में तो प्रयास किए यशोदा माँ कृष्ण को बनने के लिए, स्थान पान किया, पहले इसके बाद दूध उबालने के लिए उनको छोड़ दिया, इसके बाद कृष्ण ने दूसरे कमरे में तो वहां पर अलग अलग मटका जिसमें दूध या मक्खन था तोड़ दिया और पा लिया, वहां से जब आ गए भग गए उनके पीछे दौड़ पड़ी और दंत के साथ, लेकिन ये देख के रोने लगे भगवान श्री कृष्ण। आश्चर्य की बात, रोता है और वास्तव में तो भयभीत होकर कुछ क्षण के लिए, लेकिन बाद में उनको बांधने की प्रयास किया तो रस्सी दो उंगली छोटा था, और फिर से दूसरे रस्सी लेकर फिर से प्रयास किया तो दुंगलिया क्या किया है, एक भगवान की कृपा है कि कृपा, और दूसरे भक्त की प्रयास। जब हम प्रयास कर रहे हैं अच्छे तरह से, जब भगवान की कृपा मिल सकता है, जिससे हम अगर और प्रयास करें अच्छे तरह से और आगे जा सकते हैं और कृपा मिल सकता है, और अंत में जो अंतिम कृपा यह है जब उत्तम अवस्था पर पहुंचता है और भगवान का साक्षात स्वरूप और आत्मस्वरूप जब अनुभव कर सकता है, यह अंतिम कृपा है जब स्वरूप सिद्धि पर पहुंचता है, और इसके बाद तो भगवान के धाम प्रवेश कर सकता है जो मेरे परम गति है। भगवान श्याम सुंदर की, श्रीमती रानी की, श्रील प्रभुपाद की, समवेद भक्त वृंद की, गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल।